हम सब अगरचे इस वक्त तो अमरीका में हैं, लेकिन हमारी धड़कनें और हमारे जज्बात, हमारे मुल्क, हमारी मट्टी पाकिस्तान से वाबस्ता रहते हैं। जो सवाल मैं पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहता हूँ वो ये कि एक ट्रेंड है पिछले कुछ दस जब से हमने शऊर की आँख खोली है 10-15 साल में, तो बहुत बढ़ गया, वो ये कि लोगों को जबरी तौर पर उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, जबरी गुमशुदगी हो जाती है। तो इस जबरी गुमशुदगी पे हज़ारों की तादाद में हम देखते हैं मिसिंग पर्सन्स हैं बलूचिस्तान में और बाकी जगहों पे भी, कराची में भी लोगों को उठाया गया, सहाफ़ियों को भी उठाया जाता है, उलमा को भी उठाया जाता है, कुछ पता नहीं चलता, कुछ दिनों बाद उन लोगों को कहीं पर किसी नदी नाले के पास फेंक दिया जाता है, कहीं उनकी ट्यूनिंग करके उनको छोड़ दिया जाता है। जिन लोगों को छोड़ा जाता है वो भी फिर अहवाल बताते हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं। सवाल मेरा ये है, जो लोग उठाते हैं नामालूम लोग हैं, सबको मालूम है कौन लोग हैं, इस्तदलाल वो ये देते हैं कि ये लोग माशरे के लिए ख़तरा हैं, नज़रियाती तौर पे इनसे हमें ख़तरा पहुंचता है, इनके अफकार ऐसे हैं उससे पाकिस्तान की नज़रियाती हदूद को ख़तरा होता है, तो हम तो उसके तहफ़्फ़ुज़ में ये काम कर रहे होते हैं, अदालतें भी बेबस हैं, मजबूर हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। अहले इल्म उलमा जो अल्लाह से डरते हैं, उनकी इस मौके पर क्या जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के दीन की रोशनी में बताएं कि ये जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं ये खुदा की नज़र में कैसी हैं।
ये मेरे नज़दीक जितना कुछ मैंने दीन को समझा है, दुनिया के कानून को समझा है, ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। और आप ये जानते हैं कि कत्ल के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में, यानी अगर किसी को जानते बूझते कत्ल कर दिया है तो इसका नतीजा अबदी जहन्नम है, यखलुद फी है मुहाना, ज़िल्लत के साथ हमेशा के लिए ऐसे लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। कुरान ने कहा है कि अलफितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, यानी किसी के साथ उसके अकीदे, उसके नज़रिए, उसके दीन, उसके तसव्वुरात के मामले में जबर का रवैया इख्तियार करना, ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। ये कुरान मजीद ने कहा है, ये मामूली बात नहीं है। दुनिया ने बड़ी मुश्किल से ये अहतमाम किया है कि हम अब कानून की हुक्मरानी कायम करें। हमारे दीन में तो पहले दिन अल्लाह के पैगंबर ने यह हुक्मरानी कायम कर दी थी, खुलफाए राशिदीन पर कैसी कैसी तनकीदें नहीं हुई। अच्छे दिनों को आप छोड़ दें, उसकी मिसालें बहुत देते हैं। जब फितने के ज़माने में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये मामला पेश आया, खवारिज से पेश आ गया, गलियों में खड़े होकर धमकियाँ देते थे, और आप देखें कि उन्होंने उनके साथ क्या मामला किया। क्या किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई की, किसी की ज़ुबान बंदी की? ये कानून की हुक्मरानी है कि जिसको हर हाल में कायम होना चाहिए। अगर किसी शख्स के किसी नुक्ता नज़र पर एतराज़ है, किसी के किसी रवैये पर एतराज़ है, कोई मुजरमाना सरगर्मियों में है, तो कानून के मुताबिक आपको उसके लिए मेहनत करके मुकदमा कायम करना चाहिए, मुकदमा तैयार करना चाहिए, ऐसा मुकदमा कि जिससे आप साबित कर सकें अदालत में। आपके पास बहुत वसाइल होते हैं, रियासत के पास कोई कम ताकत नहीं होती, उन वसाइल को इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को तरबियत करें कि जो इल्मी तरीके से, फ़िक्री तरीके से, तफ्तीश के जदीद तरीक़ों को काम में लाकर अपना मुकदमा तैयार करें। वो मुकदमा कानून के मुताबिक होना चाहिए, उसके लिहाज से आप कानून के पास जाएं, जो कानून में लिखा हुआ है उसके लिहाज से कार्रवाई करें, किसी को एतराज़ नहीं होगा उसके ऊपर। यानी फिर कानून पर हम बहस कर लेंगे अगर वो कानून अच्छा है या बुरा है, लेकिन बहरहाल आप कानून की हुक्मरानी अगर कायम नहीं करेंगे और आप अपनी ताकत इस्तेमाल करके, मैं नहीं जानता कौन लोग ये करते हैं, जो कुछ सुना है, जो कुछ अंदाज़े होते हैं, ज़ाहिर है कि उनके लिहाज से बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर कोई भी ऐसी एजेंसी या कोई भी ऐसा इदारा या कोई भी शख्स, वो पुलिस में है, वो फ़ौज में है, वो ब्यूरोक्रेसी में है, वो सियासतदानों में है, अगर वो कानून से बालातर होकर इस तरह का कोई इकदाम करता है तो वो बहुत बड़े जुर्म का इर्तकाब करता है। किसी हाल में भी इसको कबूल नहीं करना चाहिए, इसके लिए कोई उज़र नहीं है, इसके लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आप सीधे तरीके से अपना मुकदमा तैयार करें। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ना पुलिस इसकी आदि हो सकी कि वो सारी मेहनत इस पर करे कि उसे मुकदमा कैसे तैयार करना है। यानी अगर आपको अपने ज़राए से मालूम हो गया है कि किसी जगह कोई शख्स मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस है, तो आपको शवाहद इकट्ठे करने हैं ना, क्योंकि अदालत तो शवाहद मांगेगी। इसी तरह का मामला आप देखें हमारे यहाँ नैब में हो रहा है। यानी बजाय इसके कि आप अपना मुकदमा अच्छे तरीके से तैयार करें, आप एक इंतकाम लेने वाला इदारा बन के रह जाते हैं। आपके एक एक इकदाम के ऊपर आम अफराद हैं वो उंगलियां मुंह में दाबते हैं, अदालतें उस पर तबसरे करती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आपको बेइज्जत करती है, लेकिन आपको इसका ख्याल नहीं होता कि सही तरीके इख्तियार किए जाएँ। यानी इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो शख्स कानून की खिलाफवर्जी करता है या कोई करप्शन करता है आप उसका एहतसाब ना करें, लेकिन उसका तरीका ये है, उसका तरीका यही है कि आपके यहाँ ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे माहिर लोग, ऐसी अहलियत रखने वाले लोग हों कि वो तफ्तीश करके पहले मुकदमा तैयार करें। यानी जब वो मुकदमा उस तरीके से आएगा तो फिर आपके यहाँ अदालती निज़ाम मौजूद है। अच्छा, अदालती निज़ाम में कोई खामी है तो अदालती निज़ाम को दुरुस्त करें, अगर जजों की तादाद कम है तो उसको बढ़ाएं, उनकी अहलियत में कोई मसला है तो उनकी तरबियत का अहतमाम करें। तो इदारे कायम करके कानून की हुक्मरानी के साथ शहरियों से मामला करना, यही किसी कौम का शरफ़ है। अगर ये तरीके इख्तियार नहीं किए जाएंगे तो फिर इस्तिब्दादी हुकूमतों की एक पूरी तारीख मौजूद है, इस्तिब्दाद बराना हो, बादशाहत की सूरत में हो, आमरीत की सूरत में हो, या इस तरह के बेहुदा पस्त हथकंडों की सूरत में हो, हर हाल में काबिल मजम्मत है और किसी दर्जे में भी इसकी ताईद नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं बेचारे, मैंने देखा है और पढ़ा भी है कि उनके आइज़ा अकरबा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, उनके दोस्त अहबाब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर बहुत हमने हंगामा किया तो हो सकता है कि उसके बाद कोई नुकसान पहुँच जाए। यानी ऐसी सूरत हाल तो आम तौर पर हम देखते थे कि उन आमरीतों में जो ख़ास तौर पर कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद कायम हुई, जगह जगह इस तरह के मामलात हुए। वहाँ क्या चीज़ थी, यानी कहीं कोई खुफिया एजेंसी, कहीं कोई इदारा, कहीं कोई और यही कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इन कार्रवाइयों से दुनिया में कभी भी आला अकदार की हिफाजत नहीं हुई। और मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि हमारे यहाँ ये जो अकदार की और शख्सियात की और नामूस की हिफाजत कानून की ताकत से कराई जाती है, इससे ज़्यादा पस्त काम कोई नहीं। ख़त्म नबूवत है, ख़त्म नबूवत कोई नज़रिया है या कोई शख्स है? नज़रिया है। नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा इस्तदलाल से होता है। बदकिस्मत है वो कौम के जो अपने पैगंबर का एहतराम कानून की ताकत से कराना चाहती है। आप मुझे बताएं, इस तरह हकीकी एहतराम पैदा होता है, हकीकी इज़्ज़त पैदा होती है? इसी तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हिफाजत है, पाकिस्तान की सालमियत है। अगर आप लोगों के अंदर कानून का एहतराम पैदा करेंगे, आप उनके मामलात का इस्तदलाल से जवाब देंगे, आप उनकी तनकीद का सामना करने की हिम्मत पैदा करेंगे, तो ख़ुद बहुत बड़े बड़े वो लोग भी कि जिनके अंदर कोई दुश्मनी के आसार भी हों, वो भी आपके हामी बन जाएंगे। क़ुरान मजीद ने जो उसूल बताया वो क्या, इदफा बिल्लती है आसन। यानी अगर बुराई भी है तो उसका जवाब देने के लिए आसन तरीके इख्तियार करो। वो ज़ुबान में भी होने चाहिए, वो उसलूब बयान में भी होने चाहिए, और वह कानून के इस्तेमाल में भी होने चाहिए। पुलिस है, दूसरे इदारे हैं, सबसे बढ़कर उनकी तरबियत ये करनी चाहिए कि अगर किसी जगह तुम किसी जुर्म की बू सूंघते हो तो उसका ये तरीका नहीं है कि लोगों को इस तरह से उठा लो, इस तरीके से उनको, उनके आइज़ा को, उनके अकरबा को इस अज़ियत में मुब्तला करो, इस तरह अपनी बदनामी कराओ, कौम की बदनामी कराओ। उसका सही तरीका ये है कि मुकदमा इस तरह से तैयार करो तफ्तीश करके कि अगर वाकई कोई जुर्म हुआ है और कानून की निगाह में कोई जुर्म हुआ है तो उसका इस्तिसाल किया जा सके। कानून बाज़ मौक़ों पर इस्तेमाल करना नागुज़ीर होता है, लेकिन कानून इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस वजह से मैं तो इनमें से किसी चीज़ की किसी दर्जे में, किसी तावील के साथ, किसी उज़र के साथ, किसी भी दर्जे में ताईद में एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकता। ये जुल्म है और कत्ल से बड़ा जुर्म है, इसलिए कि इसमें किसी फ़र्द की राय, उसके नुक्ता नज़र की बुनियाद पर उस पर जबर किया जा रहा है, और कुरान ये कहता है कि अलफितना तो अशद्दु मिनल कत्ल।
अच्छा, एक इस्तदलाल ये पेश किया जाता है कि बसा औक़ात ऐसे कुछ मुलज़मान होते हैं जिनके बारे में हुक्काम को तो पता होता है उन्होंने ये किया, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते, तो उनका इस्तदलाल ये होता है कि हम तो असल में माशरे को पुरअमन जगह बनाने के लिए, लोगों की सालमियत, लोगों की जान माल आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशल यानी अदालती निज़ाम में जाए बग़ैर हम उनको रस्ते से हटा देते हैं, तो इससे तो फ़ायदा तो कौम ही का होता है ना।
ऐसी दिलचस्प बात है, साबित नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए कि जो भी कोई मुजरिम है वो जुर्म का इर्तकाब अपने कमरे में लेट कर ख्वाब देखते हुए करता है? भाई या कॉल होगा या फेल होगा। तो आपके पास اس کا مطلب ہے کہ یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی حقیقی نگرانی کر سکیں، آپ اس کے قول و فعل کو دیکھ سکیں، آپ یہ جان سکیں کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، تو یہ اپنی نااہلیت کا اعتراف ہے. دنیا بھر کے اندر جو پولیس کے ادارے ہوتے ہیں یا مختلف تفتیشی ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ اصل میں پہلے مرحلے میں یہ سب کچھ فراہم کرتی ہیں. جب آپ وہ فراہم کر لیں گے، وہ سارا مواد آپ کے پاس ہوگا، اس کے بعد آپ عدالت میں جائیے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اصل میں دلوں کے خیالات پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نہ قول آپ کے سامنے قابل اعتراض صورت میں ہے، نہ فعل آپ کے سامنے قابل اعتراض صورت میں. یعنی یہ اس زمانے میں آپ بات کر رہے ہیں جس میں آپ گھروں کے اندر بھی کسی آدمی کی بات سننا چاہیں تو سن لیتے ہیں. یہاں میں بارہا دیکھتا ہوں یو ایس میں کہ ایسی ایجنسیاں کارروائی کرتے ہیں کہ آدمی کے پاس کوئی ایک بات نہیں کہنے کو ہوتی، ہر چیز سامنے رکھ دیتے ہیں. آج کے زمانے میں تو قدیم زمانے میں بھی جو لوگ اہل ہوتے تھے، یہ اپنی نااہلیت کا اعتراف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کہ ایک چیز آپ کے علم میں آ گئی اور فرض کر لیجئے کہ آپ بالکل سچے ہیں، تو اب آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نہایت تربیت یافتہ اور اچھے لوگوں کے ذریعے سے اس قول و فعل کا، یعنی قول اور فعل کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، یعنی آپ نیت پر کارروائی کریں گے، ارادے پر کارروائی کریں گے، خواب پر کارروائی کریں گے، کس چیز پہ کریں گے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یا فعل میں ہو رہا ہے یا قول میں ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ حاصل کرنا. اچھا، کوئی آدمی قوم و ملک کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ بات باہر نہیں کر رہا کہیں، اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے. ہم کلامی کر رہا ہے تو کرنے دیں، اس کا مطلب ذہنی توازن خراب ہے اس کا. اگر وہ باہر کر رہا ہے تو اس کو اگر دنیا سن رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں قوم کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو آپ بھی سن رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہ جو بات کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ قانون کی گرفت میں آتا نہیں. یعنی اس کے اور کوئی معنی نہیں ہے، ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے. کوئی آدمی کوئی سازش کر رہا ہے بیٹھا ہوا، تو فیل کا ارتکاب کرے گا نا، تو آپ لائیں اس کی تصویر سامنے، لائیں مقدمہ بنائیں اس کے سامنے. پھر یہ ہے کہ اگر قانون میں کوئی خامی ہے تو قانون کو درست کریں. تو اس وجہ سے یہ تو یعنی اس پہ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل ناقابل قبول چیز ہے اور بہت بدترین جرم ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو لوگ اس اذیت سے گزر رہے ہیں، ہماری ہمدردی، ہماری محبت سب ان کے ساتھ ہے. وہ کوئی بھی ہے، یعنی وہ کوئی لبرل ہے، وہ کوئی دائیں بازو کا ہے، وہ کوئی اہل حدیث ہے، وہ کوئی دیوبندی ہے، وہ کوئی بریلوی ہے، وہ کوئی ہے، وہ کوئی صحافی ہے، نہیں، سب کی عزت یکساں ہونی چاہیے. یعنی مسلمان کی عزت، مسلمان کیا، ہر انسان کی عزت، آبرو، جان، مال، اس کو بیت اللہ کی طرح کی حرمت حاصل ہے. کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف قانون سے ماورا ہو کر کارروائی کرے. قرآن مجید نے یہ بتا دیا، الا بالحق، آپ کو ہر حال میں اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہے، اس کے بعد قانون میں جو راستہ متعین کیا گیا اسی کی روشنی میں کارروائی ہوگی. اس سے ہٹ کر ہر کارروائی بالکل بے معنی ہے، بے بنیاد ہے، ایک شدید جرم ہے جس سے ہر آدمی کو اللہ سے استغفار کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے ہم سب، آخری سوال یہ ہے ہم سب کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی نظریاتی حدود، تو اب یہ تو ایک تصور اور خیالی بات ہے، تخیل ہے، یہ نظریاتی حدود کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کوئی کتاب میں لکھی ہوئی چیز ہے، اس کو کوئی آئین نے متعین کر دیا ہے، یا یہ کچھ لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ بتائیں گے کہ آج نظریاتی حدود یہ ہے، کل بڑھ گئی تھی. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ریاست کے مزاج کے خلاف ہے، تو کہا جاتا ہے تو نظریاتی حدود کو پامال کر رہا ہے. تو یہ نظریاتی حدود پائی کہاں جاتی ہیں پاکستان کی؟
ان میں سے کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی، نہ نظریاتی حدود کوئی حقیقت رکھتی ہیں، نہ قومی مفاد کوئی حقیقت رکھتا ہے. یہ بے معنی الفاظ ہیں اور یہ صرف بے گناہوں پر ظلم کے لیے بولے جاتے ہیں. قانون ایسے بنایا نہیں جا سکتا، یعنی اس طرح کے الفاظ جو اپنا تعین نہیں رکھتے، اپنا مصداق نہیں رکھتے. قانون ہمیشہ منفی بنیادوں پر بنایا جاتا ہے. یعنی آپ بتائیں قومی مفاد کے خلاف کیا بات ہوتی ہے، اس کو متعین کریں قانون میں. قول میں ہوتی ہے تو اس کو متعین کریں، فعل میں ہوتی ہے تو اس کو متعین کریں. یہ طے کرنا آپ کا کام نہیں ہے. قانون ہمیشہ تعین میں جائے گا، یعنی وہ مثال کے طور پر یہ بیان کرے گا کہ سرقہ یا چوری کی سزا ہے، تو سب سے پہلے ڈیفائن کرے گا چوری ہوتی کیا. تو اس وجہ سے جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں مثال کے طور پر قومی مفاد کے خلاف ہوتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو قومی مفاد کے خلاف ہوتی ہیں؟ متعین کریں نا، بتائیں. तो वो मनफी चीज़ें पहले आपको तय करनी पड़ेंगी, उनके ख़िलाफ़ कानून होगा। इस तरह के जो कानून बने हुए हैं, मसलन हमारे यहाँ देखिए ना, तौहीन, कि तौहीन क्या चीज़ है, आप मुतय्यन करके बताएं क्या होती है तौहीन, यानी क्या इल्मी इस्तदलाल तौहीन होती है, क्या नुक्ता नज़र का इख्तलाफ तौहीन होता है, क्या आपकी एक राय है जो आपने इल्म व अकल की बुनियाद पर कायम की है वो तौहीन होती है, क्या इल्मी लिहाज से किसी शख्सियत किसी नज़रिए पर तनकीद करना तौहीन होती है। अगर ये तौहीन है तो फिर तो हर चीज़ रुक जाएगी, फिर तो इल्म की बुनियादें हिल जाएंगी, फिर तो तहकीक के तमाम जाविये बंद हो जाएंगे। आपको मुतय्यन तौर पर बताना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। कानून हमेशा उस मनफी बुनियाद को मुतय्यन करता है। यानी आप देखें, मसलन आप ये कानून बना लें, लोगों के माल के ख़िलाफ़ इकदाम ये काबिले माफ़ी जुर्म नहीं है। भाई वो क्या इकदाम है जो माल के ख़िलाफ़ है? तो इस वजह से उलट के बताइए कि चोरी, गबन, मिलावट, अब क्या हुआ, अब चीज़ें मुतय्यन हो गई। तो ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा क्या चीज़ें कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है, क्या चीज़ें नज़रिए के ख़िलाफ़ है, बताएं ना क्या चीज़ें। आप जिस वक्त ये तायिन करने के लिए बैठेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि आपके पास कहने के लिए दो लफ्ज़ भी नहीं होंगे। तो ये सब बिल्कुल अफसाना तराजी है, इसकी कोई हकीकत नहीं। ऐसे कवानीन भी तब्दील होने चाहिए, और फिर कानून से मावरा इकदाम, ये ना अख़लाक़ी लिहाज से ठीक हैं, ना ये बैनुल अक़वामी कानून के लिहाज से ठीक हैं, ना जदीद जमहूरी इक़दार के लिहाज से ठीक हैं, और ना दीन के लिहाज से इनको दुरुस्त करार दिया जा सकता है। इस तरह के लोग जो ये इकदाम करते हैं कानून से मावरा गुमशुदगियों के इकदाम और इस नौयत के इकदाम, वो दर हकीकत अखलाकी हदूद के लिहाज से भी मुजरिम हैं, और ख़ुद इसके मुस्तक हैं कि उनको कटहरे में लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। वो बैनुल अक़वामी कानून के लिहाज से भी मुजरिम हैं, वो जमहूरी अकदार के लिहाज से भी मुजरिम हैं, और वो खुदा के दीन के लिहाज से भी मुजरिम हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से आपने इस मौजू पर बात की।